समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या है उनके पास खास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। और डेडलाइन में बात करेंगे गर्मी के प्रचंड प्रहार की, बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे सहयोगी हैं आज अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो धर्मेंद्र, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट धर्मेंद्र मणि राजेश। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Brisk polling continues for second phase of Lok Sabha elections in 88 parliamentary constituencies amid tight security.
Lok Sabha ke panchve charan ke liye namankan prakriya shuru.
Top leaders of various political parties hold back-to-back rallies and roadshows in favor of their candidates.
Sarvoch Nyayalay ne EVM VVPAT ke 100% satyapan ki yachika kharij ki.
And India and South Korea hold consultations on disarmament and non-proliferation in Seoul.
और कोलकाता में आज शाम ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। अभिषेक,
Yes, Dharminder, it's now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national and the global level.
और अभिषेक, आज ये सबसे बड़ी बात की जो है वो चुनाव जो है दूसरे चरण का चल रहा है, लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण चल रहा है और ये तो लोकतंत्र का महापर्व है और लोगों को अधिक से अधिक इसमें भागीदारी करनी चाहिए। अभी भी समय बचा हुआ है मतदान के लिए, तो जो लोग अभी घरों से नहीं निकले हैं उनको भी जल्दी से जल्दी अपने बूथ पर जाना चाहिए और मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए।
एब्सोल्युटली, गो आउट एंड एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रेंचाइज। इट्स अ वेरी एसेंशियल दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ देयर्स। एंड कमिंग बैक टू आवर डेडलाइन इंडिया टुडे, धर्मेंद्र, विल टॉक अबाउट the heat wave. And Dharminder, we know that heat waves can have significant impacts on health depending on the timing, intensity and duration of high temperatures. And Dharminder, exposure to excessive heat can lead to various illnesses including heat cramps, heat exhaustion, heat stroke and hypothermia. And according to IMD, some parts of India continue to face severe heat wave this week as the maximum temperature touched 46 degrees. The weather agency said it will continue during the next 5 days, and the prevailing heat wave conditions in the eastern regions of India marked the second occurrence of such intensity within the season, which notably escalated. Notably, Odisha and West Bengal experienced severe heat wave conditions, with Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand and Tamil Nadu also witnessing heat wave conditions during specific dates. And additionally, Telangana, Saurashtra and Kutch encountered heat wave conditions on specific dates.
और अभिषेक, आपने गर्मी की बात की है तो देश के पूर्वी भारत के राज्यों में मौसम के तापमान का मीटर लगातार बढ़ रहा है। सूरज की किरणें जमीन को तपा रही हैं जिससे मिट्टी सूख कर धूल हुई जा रही है। लोगों के घरों में पानी की खपत बढ़ गई है। दोपहर में सड़कें वीरान रहने लगी हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में पूरे पूर्वी भारत में लगातार गर्मी का कहर जारी रहने की आशंका है। 24 अप्रैल से अतिरिक्त क्षेत्रों में इसका विस्तार हो सकता है। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, इसलिए लोगों को हीट वेव यानी लू से सावधान रहने की सलाह दी गई है। अब बात यह होती है अभिषेक कि यह हीट वेव है क्या, तो अगर हम इस बारे में बताएं तो देश के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब मैदानी इलाकों में तापमान अधिकतम 40 डिग्री, तटीय क्षेत्रों का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब हीट वेव यानी लू चलने लगती है। अगर तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक हो जाता है तो भीषण गर्मी की लहर घोषित की जाती है। यानी अगर टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसे खतरनाक लू की कैटेगरी में रखा जाता है। आमतौर पर मार्च से जून के दौरान हीट वेव चलती है, जब मौसम का तापमान बढ़ता है तब लू चलने की शुरुआत होती है। भारत में सबसे अधिक हीट वेव मई के महीने में चलती है, कभी कभी जुलाई में भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अभिषेक,
यस एंड धर्मेंद्र, अनलाइक वी वर जस्ट डिस्कसिंग, द आईएमडी हैज रेज्ड एन अलर्ट दैट इंडिया इज लाइकली टू एक्सपीरियंस मोर हीट वेव डेज देन नॉर्मल ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड जून दिस ईयर। So, how can we combat this extreme heat wave? Well, firstly, prioritize self-care and nutrition. Consume lots of water, electrolytes, fruits, light snacks, herbal teas, and avoid heavy foods. So, these are some ways in which we can stay safe during the heat wave in India. And extreme heat and humidity can be extremely uncomfortable and pose serious health risks, especially for infants, children, pregnant women, and the elderly. And without taking the proper precautions, extreme heat can lead to heat stroke and even worse, fatality. And as a result of climate change, heat waves are becoming longer, more frequent and more severe. So be prepared. Know how hot and humid it is going to get today, this week and this month to help plan outside activities. Keep an emergency kit at home that contains oral rehydration salt ORS, packets, a thermometer, water bottles, towels or clothes, to wet for cooling, a hand-held fan or mister with batteries, and a checklist to identify and treat symptoms of heat stress. Know how to get help.
जी, और अभिषेक, आपने जब इतनी सारी बातें बताई हैं तो मैं ये भी बताऊं कि लू से कैसे बचा जा सकता है। आपने भी थोड़ी सी चर्चा की तो गर्म हवाओं और लू से शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ता है, इसलिए धूप में जाने से बचें, पीने का पानी साथ में रखने की कोशिश करें, एसी से निकलकर सीधे घर धूप में न निकलें। अगर आपको धूप में निकलना जरूरी है तो अपने सिर को सूती कपड़े से ढक कर निकलें, हल्के रंग के आरामदायक कपड़े पहनें, धूप से आकर कभी भी तुरंत ठंडा पानी पीने की गलती न करें, शरीर को हमेशा हाइड्रेट रखें, आम पन्ना, जूस, नारियल पानी, नींबू पानी का सेवन करें।
यस एंड इन एडिशन टू व्हाट माय फ्रेंड धर्मेंद्र हैज बीन सेइंग, आई आल्सो लाइक टू ऐड सिक्स वेज, धर्मेंद्र, सिक्स वेज इन व्हिच यू कैन स्टे कूल ड्यूरिंग दिस हॉट समर। Firstly, stay hydrated, drink at least 2 liters of water. In addition, you can try juice, coconut water and hydrating fruits. Secondly, take a lukewarm shower, not a cold shower. The reasoning behind it is that if you take a cold shower, it will make you feel even hotter. Thirdly, it is always advisable, Dharminder, to avoid tea and coffee in this weather. Fourthly, try and eat light meals that are freshly cooked. Avoid processed food and salty foods. Fifthly, soak your feet in cold water for some time. It can relax you and make you feel less hot. And lastly, wear loose cotton clothes as it will help you stay cool and avoid excessive sweating. So these then, Dharmendra, are 6 ways to keep cool when the hot sun is blazing outside.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
We all experiencing the ill effects of climate change in our daily lives, be it heat wave, unseasonal rains or droughts. Climate change is adversely affecting our life in many folds. And to make the future generation aware of the impact of climate change and help them mitigate it, Gujarat Science City in Ahmedabad has come up with the Climate Change Learning Lab, a unique awareness initiative for the common people. We have a report from a correspondent, Aparna Kunt.
We are living in a world of disparities. One corner of the country experiences extreme heat wave and drought, while the other parts witness unseasonal rains and floods. This is nothing but the impact of climate change. Taking the subject of climate change to the common people, Gujarat Science City has set up with a unique climate change learning lab in association with European Union and other global agencies. Talking about the lab, General Manager of Science Popularization Wing of Science City, Brajesh Parikh, said the lab will not only create awareness among people about climate change in an interesting way, but also offer the keen students a platform to indulge in research and development.
Climate Change Learning Lab ka purpose yahi hai ki hum aajkal dekh rahe hain ki pure vishw mein क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट हो रही है। अभी हम रिसेंटली बात करें तो दुबई में हमने देखा कि किस हिसाब से वहां पे फ्लड आया, बारिश इतनी सारी हुई, तो ये हम सबकी अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है कि हम इस पे सोचें। तो इसलिए ये साइंस सिटी में पूरा लैब बनाया गया है जहां पे जिस लोगों को इंटरेस्ट है, स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो या कॉमन जो भी हो, जिनको इंटरेस्ट है, इसलिए हमने यहां पे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जाने और उस ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम कर सकते हैं, वो एक उनको नॉलेज मिलेगा। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस क्या है वो जाने और वो कहां कहां कैसे फैले हैं और किसी ये सारे गैसेस है इनके लिए बाउंड्री नहीं है, बॉर्डर नहीं है कंट्री की, तो उनके लिए कैसे एक एक गैस दूसरी जगह डिफ्यूजन हो जाएगा तो वो कैसे रोका जाए, तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी वो सीखना है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे अभी कन्वेंशनल फ्यूल्स है उसके बदले हम नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स, मान लो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है और अभी तो हाइड्रोजन इकोनॉमी से हाइड्रोजन एनर्जी भी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो ये सारा एक अलग ऑब्जेक्टिव है कि उसको यूज करेंगे तो जितना CO2 कम हो, मतलब हमारा मेन ये सब ऑब्जेक्टिव का एक बेस ये है, नेट जीरो लाना है हमें 2030 तक।
Such initiative will play an important role in ensuring people's participation to mitigate the menace of climate change. For Parikrama, this is Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
In an extraordinary farming achievement, Mr. Elobimo Eri, a farmer from Wokha village in Nagaland, has captured widespread attention with his remarkable harvest of a coriander plant measuring an impressive 2.77 meters height. His achievement has not only turned heads but has also sparked curiosity about his cultivation methods. We have a report from a Kohima correspondent.
Mr. Elobimo Eri humbly attributes his success to traditional farming practices, emphasizing that he utilized the same seed he faithfully sown years after years. He revealed that his cultivation process involved no specialized fertilizers or chemicals, proudly declaring his coriander to be purely organic and attributed it to his dedication to sustainable agriculture. Sharing his farming techniques, Mr. Elobimo Eri said,
"My name is Elobimo Eri. My Wokha village lagaze. এইটো মহিলা বাগান দিয়ে ধুনীয়া থাকে তো অক্টোবর মহিনাতে প্লান করে আছে আর মানে একটু ফার্টিলাইজার স্পেশাল টেকনিক কি কি চলা নেই মানে নর্মাল স্ট্রিপ আমি কি চলাই থাকি তুই লাগাইছে তো এই সাল তো এনে তাই আচানক 8.75 feet লম্বা হয়ে যাই কিনা আছে।
According to Mr. Eri, this exceptional coriander plant was sown last October alongside several other batches. However, this particular one outgrew all the other coriander plants in his garden. Mr. Eri proudly said that no pruning or trimming activities were necessary throughout the plant growth cycle, adding it has given the same treatment as it did to the other coriander plants. Meanwhile, Eri's coriander plant has passed its first phase of the Guinness World Record process and will now undergo its second phase. For Parikrama with Johanna Muri Asonyo from Kohima.
मध्य प्रदेश में आज 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। करीब 1,11,00,000 से ज्यादा मतदाता 80 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इनमें 4 महिला और 1 उम्मीदवार थर्ड जेंडर से हैं।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, रीवा, सतना और होशंगाबाद संसदीय क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मतदान का दायित्व 50,000 से ज्यादा कर्मचारी संभाल रहे हैं। सभी 6 सीटों पर 12,828 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 1,136 केंद्र महिलाओं और 32 केंद्र दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित हैं, जबकि 2,865 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, खजुराहो से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सतना से कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 3 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और ब्यौरा दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता।
छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्रों में से 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में आज दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है। आज हो रहे मतदान के लिए 6,500 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में मतदान 3 बजे तक चलेगा, वहीं अन्य क्षेत्रों में मतदाता शाम 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में करीब 53,00,000 मतदाता हैं। दूसरे चरण के तहत आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य के पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद संतोष पांडेय सहित 41 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
There is a saying that in the game of democracy, every vote counts and the Election Commission of India ensures that no voter is left in the festival of democracy. The election authority also conducted a mass awareness campaign on the theme Every Vote Counts in the nook and corner of the country.
The Lok Sabha elections 2024 is going on in phase-wise manner, and the second phase polls were held today. In Manipur, one polling station has been set up for only one voter so that he can exercise his voting rights in the second phase polls held today. More from our Imphal correspondent, J.J. Thokcham.
The second phase polls have been successfully held in Manipur today in 13 assembly segments across 8 districts which come under Outer Manipur Parliamentary Constituency. The Election Commission of India also set up 9 special polling stations for the internally displaced voters who are taking shelter in different relief camps in the state. One such polling station has been set up in Morey Higher Secondary School in Technopole district for only one voter. This initiative has reflected the commitment of the Election Commission of India that every vote counts and no one is left in exercising the franchise in the festival of democracy. Speaking to Akashvani News Parikrama exclusively, the Joint Chief Electoral Officer of CEO Office Manipur, Ramananda Nomaikapam, said that the initiative has been taken to enable the voter to cast his vote today. He said,
"One very unique feature in this phase 2 is that we have set up one special polling station for only one voter. And this voter is currently staying in a relief camp in Technopole district. This special polling station for only one voter is set up in Morey Higher Secondary School. So the polling is going on peacefully."
In spite of being the special polling station for a single voter, the election authority deployed all required polling personnel and security force in the polling station. The polling station was decorated with flowers, balloon and other decorative items. The voter Hanwan Lal Lian Kaimang was given the gift from the election authority after casting his vote. He expressed gratitude to the election authority for the initiative which enabled him to exercise his voting rights. He said,
"I thank the Election Commission of India, the Chief Electoral Officer of Manipur and the ACT Nepal for giving me the opportunity to exercise my voting rights."
J.J. Thokcham, Akashvani News Parikrama, Imphal.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember the architect of the independent United State of Orissa, Krishna Chandra Gajapati Narayana Dev, who was born on the 26th of April, 1892. He was an educationist, freedom fighter and a social reformer. Krishna Chandra was the king of Paralakhemundi estate and the first prime minister of Orissa. The present-day Gajapati district of Odisha, which was earlier a part of the Ganjam district, has been named after him.
Krishna Chandra attended the first roundtable conference in London on the 16th of November 1930, wherein he made a fervent appeal for creating a separate province of Odisha on the basis of language and homogeneity. It was due to the efforts of Maharaja Krishna Chandra Gajapati, Utkal Gaurav Madhusudan Das, Utkal Mani Gopal Bandhu Das, Fakir Mohan Senapati and other eminent members of Utkal Sammelani that the separate state of Odisha was formed on the 1st of April 1936.
He also became the first Prime Minister of Odisha from the 1st of April 1937 to the 18th of July 1937. Later on, he became the second Prime Minister of Odisha till 1944. He set up many hospitals, schools, colleges, industrial institutions and modern agricultural farms and provided a record number of 1,281 water tanks in his agriculturally dominant native taluk.
Krishna Chandra Gajapati left for his heavenly abode on the 25th of May 1974. His indomitable spirit of endeavour and perseverance to make Odisha a separate state is unparalleled, and will remain as a golden chapter in the history of modern Odisha. We salute the great nationalists.
We also remember Dwarka Dasi, a prominent political worker from Golaghat, Assam. She was 5 months pregnant when arrested for her participation in the non-cooperation movement. While in jail, she was subjected to ill treatment by the jail authorities in Sivasagar. Following an abortion, Dwarika Dasi died on the 26th of April 1932 on account of the atrocities she faced. We salute the great daughter of India.
We also remember Indian National Army member Hazari, who was born on the 26th of April 1920 in District Gurgaon, Haryana. He joined the Indian National Army in 1943 and served in the Subhash Brigade. He was martyred while fighting the Allied forces in Imphal in 1944.
In business news today, Indian stock market benchmarks, the Sensex and the Nifty snapped the 5-day winning streak amid mixed global cues. Sensex closed with a loss of 609 points, or 0.82%, at 73,730.16, while the Nifty 50 settled at 22,419.95, down 150 points, or 0.67%. In the forex market, the rupee ended marginally higher at 83.35 rupees. Against the US dollar today.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. IPL क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा. कल रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रन से हरा दिया. 207 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 171 रन ही बना सके. और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस. श्रोताओं, आज सबसे पहले याद कर रहे हैं
श्रीनिवासा रामानुजन, हु पास्ड अवे ऑन दिस डे In 1929, he was an Indian mathematician. Though he had almost no formal training in pure mathematics, he made substantial contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions, including solutions to mathematical problems then considered unsolvable. His life is also portrayed on the big screen. The Man Who Knew Infinity is a 2015 film based on Kanigal's book of the same name, and Dharminder, British actor Dev Patel portrays Ramanujan in the film.
और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की जोड़ी के शंकर की आज पुण्यतिथि है. उनका पूरा नाम शंकर सिंह रघुवंशी था. 15 अक्टूबर 1922 को जन्मे शंकर के पिता राम सिंह रघुवंशी मध्य प्रदेश के थे और काम के सिलसिले में हैदराबाद में बस गए थे. शंकर अपनी कला को निखारने के लिए एक नाट्य मंडली में शामिल हो गए. बाद में 75 रूपये प्रति माह पर पृथ्वी थियेटर्स में तबला वादक बन गए. पृथ्वी थियेटर्स के नाटकों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं मिलने लगी और वहीं शंकर ने सितार बजाना भी सीख लिया. पृथ्वी थियेटर्स में ही काम करते करते शंकर और जयकिशन राज कपूर के भी करीबी हो गए. फिल्म बरसात में इनकी जोड़ी ने जिया बेकरार है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन जैसा सुपरहिट संगीत दिया. फिल्म की कामयाबी के बाद शंकर जयकिशन बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए. इस फिल्म की सफलता के बाद शंकर जयकिशन राज कपूर के चाहते संगीतकार बन गए. इसके बाद राज कपूर की फिल्मों के लिए शंकर जयकिशन ने बेमिसाल संगीत देकर उनकी फिल्मों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आइए सुनते हैं उनकी ये फिल्म का ये गीत.
एहसान तेरा हो गा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव रहने दो एहसान तेरा
बेकरार है छाई बहार है आजा मोरे बाल
Yes, and Moushumi Chatterjee, born Indira Chattopadhyay, was born on this day. She is an actress who is recognized for her work in Hindi and Bengali cinema. She was one of the highest paid actresses in Hindi films during the 1970s, and she joined the Bharatiya Janata Party in 2019.
और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री मीनू मुमताज का आज जन्मदिन है. वो अपने समय के मशहूर कॉमेडियन महमूद अली की बहन थी. सन 1950 से लेकर 1960 के दशक में बतौर डांसर कई फिल्मों में काम करने वाली मीनू मुमताज एक डांसर के साथ साथ कैरेक्टर आर्टिस्ट भी थीं. मीनू मुमताज का असली नाम मालिका उन्नीसा अली था. जब फिल्मों में काम करने लगी तो मीना कुमारी ने उनका नाम बदलकर मीनू मुमताज कर दिया था. तब से फिल्म इंडस्ट्री में मीनू मुमताज के नाम से मशहूर हो गई. आइए उनकी इस फिल्म का एक गीत सुन लेते हैं.
Absolutely. Shankar Lakshminarayanan was born on this day in 1950, better known as L. Shankar. He is an Indian violinist, singer and composer, who also goes by the stage name Shankar. Known for his innovative contributions to world music, he is often regarded as one of the pioneers of East-West fusion, blending the rich traditions of Indian classical with Western genres such as jazz, rock and electronic music. His world music albums with the band Shakti to the mid-70s became the standard to gauge the playing and composing abilities of any world musician, following in Shakti's expansive wake. He is credited with inventing the stereophonic double violin known as the LSD, L. Shankar double violin, which covers the orchestral string family's range. Let's listen in to his hit composition La Danse du Bonheur, and it's from his 1976 album A Handful of Beauty.
नितिन बोस प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक थे जिनका आज जन्मदिन है. 1935 में बंगाली फिल्म भाग्य चक्र में उन्होंने फिल्मों का पार्श्वगायन से परिचय करवाया था. बाद में यह फिल्म हिंदी में धूप छांव नाम से बनाई गई. नितिन बोस ने अपने सिने करियर में 6 मूक फिल्मों सहित 50 से भी अधिक फिल्मों का निर्देशन और छायांकन किया. नितिन बोस की फिल्म गंगा जमुना का प्रसिद्ध गीत इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के एक ऐसा गीत है जिसने नई पीढ़ी को उसके दायित्वों का एहसास कराया. तो अभिषेक सुनते हैं ये गीत.
गगर पे बच्चों दिखाओ चल के ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के
इंसाफ की गगर पे बच्चों दिखाओ चल के.
Nathan Jonas Joey Jordison was born on this day in 1975. He was an American musician. He was the original drummer of the heavy metal band Slipknot, in which he was designated number one, and the guitarist for the horror punk supergroup Murder Dolls. Let's listen into his hit track Vermilion. Marcus Aurelius Antoninus was born on this day in 121. He was a Roman emperor from 161 to 180 and a Stoic philosopher. He was a member of the Nerva Antonine dynasty, the last of the rulers later known as the Five Good Emperors, and the last emperor of the Pax Romana, an age of relative peace, calm and stability for the Roman Empire lasting from 27 BC to 180 AD. He served as a Roman consul 140, 145, and 161. Meditations, the writing of the philosopher, as contemporary biographers call Marcus, a significant source of modern understanding of ancient Stoic philosophy, and these writings have been praised by fellow writers, philosophers, monarchs, and politicians centuries after his death. And also Dharminder Kevin George Niffing was born on this day in 1965, known professionally as Kevin James. He is an American comedian and actor. He began his career by performing stand-up comedy clubs on Long Island in the 1980s.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए धर्मेंद्र मणि राजेश और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की.
नमस्कार.